जी
अहम
बिल्कुल
मौजू है, बहुत सारे लोग इसमें मुब्तला हैं,
जी
और ये किस हद तक मरबूत है हम लोगों की तर्ज़ ज़िंदगी से, और किस हद
जी
तक ख़ुद एक बीमारी है ये।
जी जी पहले मैं एक इसकी एक जनरल एक डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि
बिल्कुल।
तेजाबियत हमारे बदन में होती क्या है। ये वो तेजाब नहीं है जो बाहर मिलता है दुकानों पे, जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं,
एहसास वही वाला होता है लेकिन।
एहसास वही वाला होता है। तो जो भी हम खाना खाते हैं, जब वो हज़म होता है तो हमारे मैदे में कुछ मैदे की कुछ तहें होती है, उन तहों में कुछ सेल्स होती हैं, तो वो सेल्स प्रोड्यूस करती है एसिड। वो सेल्स एसिड बनाती है, तेजाब बनाती है, जिससे वो खाने के हाजमे में मदद करती हैं हमारे मैदे में,
जी
जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबसे ज़्यादा सबसे बहुत ज़्यादा एसिड जो हमारी बॉडी में स्टोमक में बनता है, मैदे में बनता है, जो इस इन्हिजाम में मदद करता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, जो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अगर बाहर भी आप देख लें वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है, लेकिन अल्लाह का निज़ाम ऐसा है हमारे बदन के अंदर कि उसको दूसरी चीज़ें फिर न्यूट्रलाइज करती हैं। जो भी हमारी हमारी जितनी भी बैक्टीरियाज होते हैं, फूड में बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो स्टोमक में, जो भी हम मैदे में जो खाते हैं, खाना खाते हैं, अगर उस खाने को किसी मतलब बैक्टीरिया ने शिकार हो गया हो, या दूसरी दूसरी चीज़ें उसमें हो मिली हुई हो, तो इस एसिड एनवायरनमेंट में जाते, इस एसिडिक माहौल में जाते ही, तेजाबियत के माहौल में जाते ही, वो मैदे में वो फिर न्यूट्रलाइज उसको करते हैं, कुछ बैक्टीरिया मर जाते हैं, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो इसमें सर्वाइव भी करते हैं, जो उसमें रह जाते हैं, इतने कवी होते हैं कि वो एसिड के साथ मुकाबला कर पाते हैं और अपने आप को फिर मतलब सर्वाइव कराते हैं। तो ये तेजाबियत की एक हम एक एक पीएच स्केल होती है, जिसको हम बोलते हैं पीएच स्केल।
जी बिल्कुल।
उसके ऊपर हम एक वो एसिडिक उसकी एक नंबर्स कुछ दिए गए होते हैं वहाँ पे, जो कि मतलब साइंटिस्ट्स ने बनाया हुआ है। तो उसके ऊपर एक स्केल होती है, 1 से 14 नंबर तक उस पर दिया गया है। 1 से 7 वाले जो होते हैं वो उनको हम बोलते हैं एसिडिक, और 7 से 14 तक जितने भी हो जाएंगे उनको बोलते हैं अल्कलाइन, जिसको हम बोलते हैं सुफ्त वाली चीज़ें, जो फिर उस तेजाबियत को कम करती हैं, वो वाली चीज़ें 7 से 14 तक शुरू होती है। और जो ये 7 वाला है इसको न्यूट्रल बोलते हैं, जो हमारी जिस्म के अंदर पाया जाता है, जो हमारे खून का पीएच है वो भी 7.7.34 या 3.5 से 7.45 तक होता है, जो मतलब न्यूट्रल पीएच होता है।
अच्छा।
लेकिन जब भी कोई हम चीज़ खाते हैं, और अगर इस हमारे मैदे के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें जाती हैं, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो मैंने कहा कि तेजाब मैदे से मतलब वो उसको प्रोड्यूस करता है, जब भी उस इन्हिज़ाम की वक्त आता है, अगर कोई भी बाहर का खाना अंदर चला जाए, जिस जो एसिडिक खाना हो, जो कुछ ऐसे खाने भी होते हैं जो एसिडिक होते हैं, जो अल्कलाइन खाने होते हैं, उसके साथ हम बात करेंगे आगे आगे, लेकिन पहले मैं एक जनरल डिस्क्रिप्शन दे चुका हूँ आपको कि मतलब ये एसिडिक तेजाबियत असल में हमारे
होती
बदन
क्या
के अंदर होती क्या है।
है।
जी
डॉक्टर साहब, ये अक्सर ये होता है कि मिसाल के तौर पर एक अजीब सी यूँ कह सकते हैं अजीब सा एहसास होता है कि जैसे वापस आ रहा है, वापस आ रही है, वो जलाती बहुत ज़्यादा है वो चीज़। क्या ये वही एसिड है जो आ रहा है,
जी
यानी जो हम लोग के खाने की नाली में, या कुछ और
जी
है?
ये खानों पे भी डिपेंड करता है कि हम कौन सा खाना ले रहे हैं। जब ज़ाहरी तौर पर उसका कोई असर नहीं होता है, लेकिन जब वो हमारे जिस्म के अंदर चला जाता है, फिर वो अपने असरात मतलब जाहिर कर देता है। तो हमारे जिस्म के अंदर एक वो एक शीट की तरह होता है, जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं, जो अपर हमारी बॉडी होती है, जो हमारा चेस्ट होता है, उसको एब्डोमेन से सेपरेट करता है, और उसमें कुछ सुराख होते हैं जिसमें हमारी गिज़ा की जो ये नाली होती है उसी के थ्रू पास करके हमारे मैदे में पहुंच जाती है। तो कभी क्या होता है कि कभी कभी जो एसिड प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी के अंदर, तो कभी हर्निया प्रोड्यूस हो जाता है उस फूड उस डायफ्राम में, जो मैंने कहा वो शीट की तरह हो जाता है, और वो जो गिज़ा की नाली है जो मैदे के साथ कनेक्ट हो जाती है, उसमें हर्निया प्रोड्यूस हो जाता है। हर्निया का मतलब है कि कुछ सुराख पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से जो आप गिज़ा खाते हो, तो वो जब हम गिज़ा खाते हैं उसके बाद वो वहाँ पर एक स्फिंक्टर्स एक वो ताले की तरह होता है, अल्लाह का वो निज़ाम होता है कि वो जब हम खाते हैं तो फिर वो ताला जैसा वो बंद हो जाता है, ऊपर खाना नहीं जलता है। लेकिन जब ये हर्निया का मसला पेश आ जाता है, उसमें सुराख पैदा हो जाता है, तो ये एसिड जो प्रोड्यूस हुआ है मैदे में कि गिज़ा को हज़म कर लें और दूसरी चीज़ों को भी हज़म कर ले, ज़्यादातर जितने भी प्रोटीन्स मैदेनियात हैं उनको भी मतलब छोटी छोटी चीज़ों में तब्दील कर ले, ताकि हमारे जिस्म को कवी और दूसरी दूसरी चीज़ें हासिल हो जाएं। लेकिन जब इस हर्निया की वजह से वो क्या होता है कि वो वापस चला आता है, और कभी ये भी होता है कि ज़्यादा एसिडिटी, ज़्यादा तेजाबियत होने की वजह से कुछ खाने से भी, और कुछ अपने जिस्म के साथ मतलब कुछ प्रोटीन्स پرابلمز پیش آنے سے بھی زیادہ ایسڈ پیش ہو جاتا ہے، تیزابیت زیادہ ہو جاتی ہے یا کم بھی ہو سکتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ فیلنگ پھر آ جاتی ہے. اگر ہرنیا جو آپ نے کہا ابھی وہ ہرنیا کی وہ ایک مطلب اس میں میجر اس کا ایک رول ہوتا ہے، تو ہرنیا کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ایسڈ پروڈیوس ہوتا ہے جو بھی آپ ہضم کر لیتے ہیں وہ پھر واپس آپ کی غذا کی نالی سے اوپر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر وہ سر میں وہ پھر عجیب سی احساسات آ جاتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہرنیا آپ جس کی بات کر رہے ہیں یہ مثال کے طور پر کسی خاص ایج میں وجود میں آتا ہے؟ کیوں ہم حتیٰ چھوٹے بچوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز جیسے کھانا انہوں نے اگل دیا ہے، جو بالکل یوں کہہ سکتے ہیں کہ بیبیز جو ہوتے ہیں بالکل پیدا ہوئے بچے وہ اکثر دودھ وہ کر دیتے ہیں، ان میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے یا نہیں یہ بات آگے جا کے ایک بیماری کی طرح سامنے آتی ہے؟
یہ ایک جس کی ہم نے بات کی ابھی ہرنیا کی، یا ایک جینیٹک ڈیفیکٹ بھی ہو سکتا ہے جو جینیائی ہو سکتا ہے کہ کچھ ڈیولپمنٹ کی وجہ سے جو ماں کے رحم میں جو بچہ مطلب ڈیولپ ہو جاتا ہے تو اس میں کچھ پرابلمس ہو سکتی ہیں. جب ہمارا یہ انہضام کا جو سسٹم ہے مطلب یہ بن جاتا ہے بننے میں ہوتا ہے اس کی مدت ہوتی ہے تو اس میں کچھ پرابلمس ہو جائے تو وہ ہرنیا پیش آ سکتا ہے، یا آگے جا کے ہمارے جسم میں کچھ ایسے چیزیں ہو سکتی ہیں جو آگے جا کے یہ کسی ایج تک منحصر نہیں ہے، کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے. لیکن زیادہ تر جو ابھی آپ نے کہا کہ بچوں میں جو یہ واپس کبھی دودھ پیتے ہیں تو پھر وہ واپس لاتے ہیں، وہ ایکچولی وہ دوسرے ایک پروسیس ہے اس کی، تو اس کے ان جسم ان کے جو بچوں کا جسم ہوتا ہے ان کے اندر ایک انزائم کام کرتا ہے، ان کی معدے کے اندر ایک جس انزائم ہوتا ہے جو اس دودھ کو پھر وہ تھوڑا وہ اندر ایک ٹائپ کا دودھ لیتے ہیں، ایک مطلب اس کی ایک روش ہوتی ہے، اور جب وہ باہر پھینکتے ہیں وہ تھوڑی وہ دہی کی طرح باہر آ جاتا ہے، تو وہ انزائم اس کو کنورٹ کر کے باہر آتا ہے، اس میں بھی ایسیڈیٹی کے فیکٹرز جو ہے وہ بھی اس میں ملوث ہوتے ہیں.
دال اور یعنی ہاں دال اور چاول کے بنے آٹے کی روٹی کا استعمال جب یہ کرتے ہیں تو ان کے معدے میں جلن شروع ہو جاتی ہے، کیا وجہ ہے اس کی بتائیے؟
جی، اس سے پہلے میں کچھ ایک ان کھانوں کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. ہمارے پاس جتنے بھی ہم کھانا کھاتے ہیں ان میں سے کچھ تیزابیت والے بھی ہیں اور کچھ الکلائن جیسے میں نے کہا سفت والے غذائیں ہیں جو پھر تیزابیت کو نیوٹرلائز کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنے بھی تیزابیت والے غذائیں ہیں ان کو نہیں کھانا چاہیے، ان کی اپنی مطلب مفید طریقے سے ان کی اپنی افادیت ہے، ان کی اپنی ضروریات ہیں ہمارے جسم کے اندر. جیسے جتنے بھی ہم روٹیاں کھاتے ہیں دال کی بنی ہوئی ہو یا جتنے بھی ویٹ کی بنی ہوئی ہو، گندم کی یا آٹے کی بنی ہوئی روٹیاں ہوں، وہ سارے ایسیڈک میں آتے ہیں، وہ سارے ایسڈ پروڈیوس کرتے ہیں ہمارے جسم کے اندر. اور دوسری چیزیں جیسے ہم پی نٹس کھاتے ہیں، یہ دال والی باتیں ہو گئی، جتنی بھی دالیں ہیں بیشتر وہ سارے ایسڈس پروڈیوس کرتے ہیں، اور جتنے بھی فروٹس میں سے کچھ ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں گے زیادہ تر ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس نیمو ہوتا ہے. نیمو ظاہری طور پر جس سے بھی آپ بات کہو گے یہ کہے گا یہ تیزابیت کی حیثیت سے کام کرتا ہے ہمارے جسم کے اندر، لیکن جب بھی ہم اس کو کھاتے ہیں یہ اس کے برعکس کام کرتا ہے، یہ تیزابیت کا کام نہیں کرتا ہے، یہ الکلائن والا کام کرتا ہے. تو جتنی بھی دال سے بنی ہم جتنے بھی پی نٹس والے ویٹ والے اور جتنے بھی ہم یہ کھانے کھاتے ہیں تو یہ ایسیڈیٹی پروڈیوس کرتے ہیں. ان کو اس سوال کا جواب ہے کہ ان کو چاہیے کہ جتنے بھی الکلائن چیزیں ہیں وہ کھا لیں. مثلاً الکلائن میں سے زیادہ تر جتنے بھی فروٹس جتنے بھی میوے ہیں سارے میوے جتنے بھی ہیں ایکسیپٹ بیریز گریپس جن میں انگور ہوتے ہیں، انگور جیسے مشابہ کھانے ہوتے ہیں وہ ایسیڈک ہوتے ہیں. لیکن جتنے بھی باقی میوے ہیں خاص کر جو تربوزہ ہوتا ہے اس کو کھایا کریں، جسے ایسیڈیٹی کم ہو جاتی ہے، جس سے وہ ایسڈ کم ہو جاتا ہے وہ اس کو نیوٹرلائز کرتا ہے. ہمارے جسم کے اندر اللہ پاک نے ایک نظام قائم کیا ہے، جب وہ ایسڈ ہمارے معدے کے اندر پروڈیوس ہوتا ہے، یہ تیزابیت پروڈیوس ہوتی ہے، ہمارے جگر سے کچھ ایک چیز ایسی نکلتی ہے بائل جس کو ہم بولتے ہیں، بائل اس ایسڈ کے ساتھ مل کے اس کو نیوٹرلائز کرتا ہے. لیکن اگر یہ ایسیڈیٹی زیادہ ہو تو وہ بائل اپنے نارمل لیول پہ نکلتا ہے جگر سے اور وہ اس ایسڈ کو نیوٹرلائز نہیں کر پاتا ہے، تو اس سے بھی ہمارے جسم کے ساتھ وہ پرابلم ہوتی ہے اور ہم تیزابیت کا شکار ہو جاتے ہیں.
چلتے ہیں یہاں پر ڈاکٹر صاحب کی طرف. ڈاکٹر صاحب، قاسم علی لکھتے ہیں کہ جب بھی میں میٹھا کھاتا ہوں تو وہ میٹھا اسی وقت جو ہے واپس آ جاتا ہے، رات کو کھانا جب میں کھاتا ہوں تو میں رات بھر سو نہیں سکتا ہوں. اس کے علاوہ یہاں پر ہمارے پاس ایک اور سوال آیا ہے کہ خالی پیٹ صبح ناشتے میں کچھ دوائیاں لی جاتی ہیں، کیا وہ تیزابیت کا باعث بن سکتی ہیں یا نہیں؟
جی ڈاکٹر صاحب،
जो भी जितने भी मीठे खान जो मीठा है शुगर की हम बात करेंगे जो मीठा है वो बनिस्बत मतलब खुद उस वो एक एसिडिक प्रोड्यूस करता है,
अच्छा
जितने भी शुगर्स हैं जितने भी ज़्यादातर जिसमें भी जिन गज़ाओं में भी ज़्यादा ये मीठापन पाया जाता है वो फिर एसिडिक साबित हो रहे हैं। वो तेज़ाबियत आपके उनके मतलब इस चीज़ के हामिल है कि वो तेज़ाबियत आपके जिस्म में बढ़ाते हैं। तो इनको चाहिए कि अगर ये अल्कलाइन फूड्स यूज़ करें शुगर के साथ साथ, मैंने कहा सबसे ज़्यादा अल्कलाइन फूड जो मैंने कहा फ्रूट्स में से एक तरबूजा है, इसके साथ इसके अलावा स्पाइसेस जितने भी हम स्पाइसेस यूज़ करते हैं जो ये मसाले हैं ये सारे अल्कलाइन फूड्स हैं, ये आपकी तेज़ाबियत को कम करते हैं
वाकई।
वाकई में।
अच्छा
तो इनको चाहिए क्योंकि मेरी खुद भी एक ये तजुर्बा रहा है कि जब भी मैं मतलब मेरे मैदे में कुछ तेज़ाबियत जैसी कुछ फीलिंग आ रही हो एहसास आ रहा हो तो मैं कुछ मतलब स्पाइसेस का इस्तेमाल करता हूँ तो उसकी वजह से वो कम हो जाता है। तो इनको चाहिए कि कुछ स्पाइसेस का इस्तेमाल करें लेकिन उस कदर ज़्यादा भी ना कि वो उस बाइस कुछ दूसरा, मैं कहता हूँ कि एक बैलेंस कायम रखें। तो उसको चाहिए कि वो अल्कलाइन फ्लूड्स यूज़ करें जिसके साथ वो इनको दे आजमाएं कि अगर मेरी ये ठीक हो रही तो उनकी उन फूड्स अल्कलाइन फूड्स को यूज़ करने से मेरी तेज़ाबियत या जो ये प्रॉब्लम है ये कह रहे हैं कि मीठा खाना फिर वापस आ जाता है अगर वो ठीक हो जाए तो ये सही बात है, अगर नहीं ठीक हुई तो डॉक्टर साहब के साथ रुजू करना चाहिए उनके साथ बात करनी चाहिए। कि शाम के साथ भी यही गिज़ा है, शाम को हम ज़्यादातर फास्ट फूड्स यूज़ करते हैं वो भी ऐसे ही है, फास्ट फूड्स जब हम यूज़ करते हैं या दूसरी चीज़ें यूज़ करते हैं तो जो हम चावल खाते हैं शाम को चावल सारे जितने भी चावल हैं वो एसिडिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो उनके साथ साथ एक बैलेंस, मैं नहीं कहता हूँ कि मत खाया करें, मैं कहता हूँ कि उसके साथ आप अल्कलाइन जो जितने भी सुस्त गजाएं हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करें
इस्तेमाल
ताकि
करें।
वो न्यूट्रलाइज हो जाए और आपके जो जिस्म है वो कवी और सही सलामत रहें।
डॉक्टर साहब दूसरा सवाल था सुबह को जो दवाएं ली जाती
जी
हैं
जी
खाली
जी
पेट।
अक्सर हमारे बरसगीर में अक्सर कहते हैं कि जब भी किसी को कोई मैदे की प्रॉब्लम होती है तो वो कहता है कि आप ये दवाई ले लो। इन दवा इन्होंने इस दवाई का नाम भी बताया था कि पेंटॉप, और दूसरे में एक इसके साथ में ऐड करो रेनेडॉम, उसके साथ आता है रेनेडॉम भी खाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है मैदे की प्रॉब्लम तो उसको कहता है मुझे मैदे में दर्द हो रहा है, तो वो
वो यही
खाता है
होता है।
सुबह सवेरे ही खाता है और कहता है कि खाने से पहले ही खा लेना चाहिए बाद में खाना चाहिए, लेकिन बरअक्स होता है कि खाने के बाद खाना चाहिए, हम खाने से पहले ही खाते हैं। जितने भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने अभी जिक्र किया कि अगर तेज़ाबियत कम हो तेज़ाबी आपके जिस्म में अभी टेबलेट्स आ रहे हैं उनको खा लें तो वो मतलब आपकी तेज़ाबियत बढ़ाते हैं, वो खाने के बाद खाना चाहिए खाने से पहले नहीं
नहीं
खाना
खाना
चाहिए।
चाहिए।
तो जितने भी ये टेबलेट्स आते हैं ऐसा ही नहीं खाना चाहिए कि अभी हमारी एक वो रूटीन बनी हुई है जब भी हमारे साथ कोई मतलब मैदे की प्रॉब्लम हो या जो भी लोअर एब्डोमेन में हमारे साथ कोई मसला आता हो तो हम सीधे मैदे की दवाइयाँ खाते हैं जिनकी वजह से फिर मैदे में भी प्रॉब्लम्स हीट बर्न्स होते हैं जैसे हमने कहा वो जलन पैदा हो जाती है। फिर तो जितने भी उनको डॉक्टर्स के साथ ऐसे एक तो वो यूज़र मतलब वो यूज्ड होता है नॉर्मली उसके उसके साथ अब वो उसकी एक आदत बनी हुई होती है कि हर दिन कोई ना कोई वो टैबलेट खाता रहता है, जब तक वो टैबलेट नहीं खाएगा उसको हजम नहीं होगा वो चीज़ें नहीं खाएगा। तो इसका दूसरे भी मतलब इसके फैक्टर्स हो सकते हैं दूसरे भी अवामिल हो सकते हैं उसके अलामात हो सकते हैं, अपने डॉक्टर साहब के साथ रुजू करें। और ज़्यादातर अगर आपकी तेज़ाबियत का मैं जिक्र अभी हमारा तो तेज़ाबियत का जिक्र हो रहा है, मैं
जी
एक जनरल डिस्कशन कर चुका हूँ इस पर किन किन चीज़ों से और किन किन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए, किन किन चीज़ों किन किन चीज़ों से हम इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं।
डॉक्टर साहब क्या आबो हवा, मिसाल के तौर पर हम कश्मीर की मिसाल देते हैं जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ खुश्क आबो हवा है, अगर वहाँ पे यही जैसे बहुत तेज़ मसालेदार खाने जो है हम लोगों ने इस्तेमाल किए और हम आ जाते हैं नीचे हम बिल्कुल जुनूब की तरफ कराची में और जहाँ पे बहुत ज़्यादा मरतूब आबो हवा है वहाँ पे अगर हम उसी तरह के खाने इस्तेमाल करें इन दोनों में क्या हमारे मेदे पर मुख्तलिफ असरात असर अंदाज होंगे या नहीं?
जी बिल्कुल ये सही बात है कि एक जगह एक खाना खाना खाते हैं और दूसरी जगह उनका तर्ज ज़िंदगी अलग होता है वो दूसरे खाने खाते हैं। तो हमारी अल्लाह की ये भी एक बहुत बड़ी नियामत है कि जो भी हम खाते हैं तो हमारी बॉडी उसके साथ फिर अडाप्ट हो जाती है, एक जगह हम रहेंगे तो उसके साथ अडाप्ट हो जाती है। मसलन मैं कश्मीर से ईरान आ गया, कश्मीर में मैं कुछ और खाना खाता था, यहाँ पे लोग एक वो चीज़ आती है जैतून जिसको बोलते हैं तो वो जैतून खाते हैं, वो जैतून भी एक वो भी एक वेजिटेबल है लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो भी एसिडिटी प्रोड्यूस करता है। तो
अच्छा।
जब मैंने यहाँ पे खाया तो मुझे भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई पहले पहले, अभी मैं खाता हूँ, अभी मुझे वो मेरी फिर बॉडी उसके साथ एडाप्ट हो गई है, अभी मैं भी खाता हूँ। उसके साथ साथ आपने कहा कि मतलब यहाँ पे मरतूब गजाए, मरतूब आबो हवा है, वहाँ पे कुछ गजाएँ खाती है, और कश्मीर में दूसरी या दूसरे ऐसे इलाके हैं वहाँ पे कुछ गजाएँ खाई जाती हैं। तो अपने अगर आप एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे हो, पहले ही अपने खाने के ऊपर एक वो बना लें कि मतलब मैं कौन, मुझे किस किस चीज़ से प्रॉब्लम होती है, या मैं कौन कौन चीज़ें वहाँ पर खाना चाहता हूँ। अक्सर देखा जाता है हमारे बरसगीर में हर जगह चावल खाया जाता है, बरसगीर में हर जगह जहाँ आप जाएंगे चावल खाते हैं। मैं नहीं कहता हूँ मत खाएं, मैं भी खुद भी खाता हूँ और दूसरे लोग भी खाते हैं, दूसरे डॉक्टर्स भी खाते हैं। तो उसके साथ साथ उसको फिर न्यूट्रलाइज करने के लिए दूसरी चीज़ें भी चाहिए कि उनको उनके उनको मतलब हम ज़्यादा एसिडिक जब खाना खाते हैं जिनके ऊपर हमारा जहन नहीं होता है, लेकिन उन वो एसिडिटी प्रोड्यूस करते हैं, उसके साथ साथ आपको अल्कलाइन गजाएँ भी खानी उसके उससे ज़्यादा लेनी पड़ेगी ताकि आपके जिस्म सही सलामत रहे और न्यूट्रलाइज हो जाए।